والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
ایک اور بلند تر صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ ایک بظاہر نہایت مختصر لیکن فی الواقع نہایت عمیق اور ہمگیر اور عظیم الشان آیت ہے جسے میں آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو موضوع ہے وہ ہے راز قدرت اور حسین. اس میں شک نہیں کہ جب تک کوئی حامل اسرار الہی نہ ہو, جب تک کوئی ناموں سے فطرت سے آشنا نہ ہو, جب تک کوئی راز قدرت سے واقف نہ ہو, اس وقت تک وہ منصب جلیل امامت پر فائز ہو نہیں سکتا. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء ابو عبد اللہ الحسین
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد
کی ذات گرامی وہ ہے جو اشارات فطرت, عبارات مشیت اور نقل و عقل ہر اعتبار سے منصب جلیل امامت پر فائز ہے. امام حسین, یہ دو الفاظ ایسے ہیں امام اور حسین جو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. چند شخصیتیں بس ایسی ہیں تاریخ میں کہ جن کے ساتھ لفظ امام ایسا سجتا ہے, نکھرتا ہے, اور لفظ امام کی پوری معنویت جلوگر ہوتی ہے. بس چند ہی نام ہیں, یا امام علی کہیے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, یا امام حسین کہیے تو وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے, یا امام حسن کہیے تو وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ وہ نام ہیں کہ जिनके साथ ये लकब, ये लफ्ज़, ये कलिमा अपनी पूरी मानवियत के साथ सजता है। और यूं तो लुगत देखिए, ये तो सभी को मालूम होगा कि अल्फाज की लुगवी हैसियत कुछ और होती है और अल्फाज की इस्तिलाही हैसियत कुछ और होती है। अगर लुगवी हैसियत पर हमेशा महमूल की जाए बात, तो कभी कभी बात लगव होकर रह जाती है। लुगवी हैसियत तो इमाम की ये है कि कोई चीज़ जो सामने हो उसको आप इमाम कह सकते हैं, जो चीज़ आपके आगे हो, सामने हो, वो इमाम कह सकते हैं आप उसे। अब ये अपनी अपनी किस्मत है, कौन किसको अपने सामने रखता है, कौन किसे अपने आगे रखता है। तो इमाम की लुगवी हैसियत जो है वो बस ये है कि जो चीज़ सामने हो, लेकिन इमाम की एक इस्तिलाही हैसियत है, यानी एक टर्मिनोलॉजी के एतबार से इसकी एक अपनी डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन में उम्मत इस्लामिया के दरमियान दो बड़े गिरोह पाए जाते हैं, जहाँ इमामत की डिफिनेशन में जौहरी इख्तिलाफ है। इमामत की डिफिनेशन में जौहरी इख्तिलाफ है, एसेंस का फर्क है, जौहर का फर्क है। वो चीज़ जो मुकव्वे में तारीफ होती है उसी का फर्क है। यानी किसका इमाम इल्म कलाम में जब इमामत की बहस छिड़ती है और इस बहस से कोई सरफ नज़र नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए कि इमामत इंसानी मुआशरे की एक ज़रूरत है, लाबुद्दा में एक ज़रूरत है। इंसान, इंसानी मुआशरा बग़ैर इमाम के, बग़ैर सरबराह के, बग़ैर हाकिम के, बग़ैर वली अमर के रह नहीं सकता, वरना मुलूक तवाइफ़ी या तवाइफ़ुल मुलूकी की कैफियत रहेगी। ये तरकीबें मैंने इस्तेमाल की हैं, डिक्शनरी में देख लीजिएगा जाकर। एक साल बाद पढ़िए मोहम्मद। यानी कोई एक सही सालिम मुत्तहिद मुआशरा वजूद में नहीं आ सकता बग़ैर इमामत के। इस पर तकरीबन दुनिया के तमाम अफराद का इजमा है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। इंसान को हाकिम चाहिए, मुल्क को हुक्मरान चाहिए, चाहे वो आदिल हो चाहे जालिम, लाबुद्दा। चाहे वो आदिल हो चाहे जालिम, हुक्मरान की ज़रूरत है। अब यहाँ जौहरी फ़र्क ये है और आजमाइश अक्ल व फितरत की ये है कि आप अपना हाकिम, हुक्मरान, इमाम, रहबर, कायद, लीडर आप किसे चुनना चाहते हैं और आपको किसे चुनना चाहिए, मुजरिम को या मासूम को, जालिम को या आदिल को, अच्छे आदमी को आप चुनना चाहेंगे या बुरे आदमी को, ये आप पर है। और मैं समझता हूँ यहाँ भी पूरी दुनिया में बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ दीन व मज़हब व मसलक किसी भी इंसान से पूछिए, वो चाहे गोरा हो या काला, वो मशरिक़ का हो या मगरिब का, वो शमाल का हो या जुनूब का, कि तुम किसे अपना लीडर चुनना चाहते हो, किसी बुरे आदमी को? वो कहेगा नहीं साहब, हम तो चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर का इंतखाब है। तो ये फितरत की आवाज़ है। अगर आम इंसान ये चाहेगा, ये चाहता है कि वो अपना रहबर, अपना लीडर, अपना कायद बेहतर से बेहतर चुने, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला अगर किसी का इंतखाब करे तो वो बेहतर से बेहतर ना हो?
नारे हैदरी,
नारे
हैदरी,
नारे
मोहम्मद व आले मोहम्मद।
सिलसिले बयान ज़ाहिर राज़ क़ुद्रत और हुसैन है, लेकिन दरमियान में बाज़ सवालात आते हैं और फिर जो अहम सवालात हैं वो मैं चाहता हूँ कि उनका जवाब ज़रूर दिया जाए, चाहे वो बराह रास्त मौजू से मरबूत हों या ज़रा हट कर, लेकिन बहरहाल जवाब देना ज़रूरी महसूस होता है। और चूँकि ये सवाल हुआ है तो इसलिए आज इस रुख से गुफ्तगू हो रही है। इस बहस में उम्मत इस्लामिया अफसोस है कि कई मुगालतों का शिकार हो गई। मैं बहुत हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुगालतों का शिकार हो गई और आवाम मुगालतों का शिकार हो गए, खवास खलत मबहस में मुब्तला हो गए। खलत मबहस मुख्तलिफ बहसें एक दूसरे में ऐसे मिला दी कि कोई नतीजा हासिल ना हो पाए, हालांकि मसला बहुत साफ है। और फिर इस ज़िम्न में इसी खलते मबहस के नतीजे में और मुगालतों के नतीजे में कुछ सवालात, कुछ शुबहात ऐसे कायम कर दिए गए कि जिसे बार बार दोहराया जाता है, बार बार। आप देखेंगे बार बार ये सवालात और शकूक व शुबहात उभारे जाते हैं। मसलन एक शुबा ये कि तौहीद और नबूवत के बाद अगर इमामत वाकयन उसूल दीन में है तो फिर इसका कुरान में जिक्र क्यों नहीं? अच्छा, अब सवाल इस तरह कायम किया है जो बिल्कुल बेअसास है। पहले तो एक गलत मफरूज़ा फ़र्ज़ किया, उस पर सवाल कायम किया। जैसे मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि ये हाल खाली है, फिर मैं पूछूँ कि लोग हैं या नहीं, मुझे ये मान के चलना चाहिए कि सामने मजमा बैठा हुआ है, मैं किसी से गुफ्तगू कर रहा हूँ और फरमाया, मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि हाल खाली है। जैसे फ़ख्रुद्दीन राज़ी से मुतालिक या किसी और से मुतालिक ये है कि मंतिक में बहुत कमाल रखते थे, मंतिक में, लॉजिक में बहुत कमाल रखते थे। अब वो जनाब वाला हौज़ के किनारे बैठ के दर्स दे रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर मैं चाहूं तो ये साबित कर दूं कि ये हौज़ पानी से खाली है। हौज़ लबालब पानी भरा हुआ। किसी मंतक के उस्ताद से मुतालिक ये बात मंसूब है। लफाजी है या इल्म? और ये इल्म है सिर्फ आपके जहनी तायुश के लिए या जिंदगी की तामीर के लिए? हर इल्म को जिंदगी से जुड़ा हुआ होना चाहिए और ज़िंदगी की तामीर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसका समरा होना चाहिए। तो अब वो हौज़ के किनारे बैठे हुए हैं और हौज़ लबालब पानी से भरा हुआ है, कहते हैं अगर मैं चाहूँ तो साबित कर दूँ कि हौज़ पानी से खाली है। اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی منطقی مغالطوں سے کام لیا ہوگا، صغرا کبرا جو بھی نتیجہ اخذ کیا، اس کے بعد کہا کہ اب نتیجہ نکلا کہ حوض پانی سے خالی ہے. شاگردوں سے کہا تم میں کسی میں ہے مجال جو میرے استدلال کو جھٹلا سکے؟ اب ظاہر ہے شاگرد استاد کا رشتہ وہ بھی اس زمانے کا، جہاں شاگرد استاد کو اپنا باپ سمجھتا تھا، باپ سے بڑھ کر سمجھتا تھا، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ اب ان کا جواب کون دے. ایک تھا جری جو حکایت نقل کی جاتی ہے، کہا جی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حوض پانی سے بھرا ہوا ہے. کہا کیسے؟ وہ اٹھ کے قریب آیا، ان کو بھرپور گود میں اٹھایا اور حوض میں ڈال دیا. کہا آپ بتائیے حوض میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ لطیفہ بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا نا. اب کئی دن سے لوگ کہہ رہے تھے بڑی سنگین بحث ہو رہی ہے، بہت زبان سمجھ میں نہیں آتی اور بہت الجھی ہوئی بحث ہے. اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں ہو سکتی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. یہ حکایت نقل کی جاتی ہے کیوں؟ یہ کلاس روم میں بھی نقل کی جاتی ہے، اس لیے میں نے ممبر پہ بھی نقل کی. کیوں؟ اس میں ایک درس پوشیدہ ہے. درس یہ پوشیدہ ہے کہ بدیہیات کا انکار نہیں کیا جاتا. یہ کمال علم نہیں ہے کہ حسد کو نیست ثابت کیا جائے، یہ کمال علم نہیں ہے کہ بدیہیات کا انکار کیا جائے، یہ کمال علم نہیں ہے کہ دن کے دوپہر میں اور دو بجے یا ایک بجے ظہر کے وقت، زوال کے وقت آپ کھڑے ہو کے کہیں دیکھو میں ثابت کر رہا ہوں کہ سورج نہیں ہے، یہ کمال علم نہیں ہے. اور ہمارے یہاں اور یہ اس طرح کے مغالطہ آمیز استدلالات بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ مسلمان مفتیوں اور مولویوں کے ہاں، افسوس اس بات کا. اور جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے، کہ پہلے تو ایک غلط مفروضہ قائم کیا، یعنی جو فرض کی بات آپ نے وہ غلط ہے، اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، اب ہمیں مکلف کر رہے ہیں کہ آپ جواب دیجئے. اور ہمارے یہاں اس کا یہ واضح ہے کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے، امامت کا قرآن میں کیوں نہیں تذکرہ ہے؟ کہاں تذکرہ نہیں ہے؟ امامت کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے؟ قرآن خود امام ہے، اور قرآن کے مضمون کا محور امامت ہے. قرآن مجید کے مضمون کا، موضوع کا محور امامت ہے. وہ نظام جو قرآن مجید نے معاشرہ انسانی کی تنظیم کے لیے دیا ہے، اس نظام کا نام امامت و ولایت ہے. اور اتنا جامع، اتنا کامل بیان قرآن مجید میں امامت کا موجود ہے، اس کے اپنے انداز میں. قرآن مجید کی شان بلاغت وہی کہ جہاں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمویا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک فقرے میں پوری پوری بحث سموئی ہوئی ہوتی ہے. تو پہلے تو قرآن مجید کے لہجہ شناس بنیے، پہلے تو قرآن مجید سے استنطاق کی استعداد پیدا کیجئے، یہ سیکھیے کہ قرآن مجید پڑھتے کیسے ہیں اور قرآن مجید سے کچھ پوچھتے کیسے ہیں، قرآن مجید سے سوال کیسے کرتے ہیں. اور یہ اس وقت تک آپ کو آئے گا نہیں جب تک کہ زیر ممبر صاحب سلونی بیٹھیں گے نہیں. جواب تو میں عرض کروں گا، لیکن بعض نکات کی طرف، جو نکات بہت واضح ہیں لیکن پھر بھی ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. امامت سے پہلے کیا ہے؟ نبوت. اور نبوت سے پہلے کیا ہے؟ توحید. یہ نبوت اور توحید کو بھی کیا آپ نے قرآن سے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ نبی کی شناخت اور خالق کی شناخت قرآن سے ہوگی، یا عقل انسانی سے؟ اگر عقل انسانی سے استفادہ نہیں کیا تو قرآن مجید سے نبوت کی دلیل پیش کریں گے تو اس دلیل کو باطل کہا جائے گا منطق کی اصطلاح میں. کیوں؟ اس لیے کہ دور لازم آئے گا. دور کسے کہتے ہیں؟ دور سمجھ لیجئے اب یہ بالکل پیور علمی مسئلہ ہے. کبھی بھی آرگومنٹ کے لیے، ایویڈنس پیش کرنے کے لیے، آرگومنٹ اور پروف پیش کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے دور کسے کہتے ہیں. دور اب بالکل پھر ویسی مثال دوں نا کہ بچے تھوڑا ہنس بھی لیں اور یاد بھی رکھیں. دو شخص کھڑے ہوں، دو شخص اور کوئی تیسرا نہ ہو، تیسرا صرف سوال کرنے والا ہو. ایک کا نام ہو مثلا عمر اور دوسرے کا نام ہو بکر، اور پوچھا جائے کہ عمر صاحب کے والد کون ہیں، کہا جائے بکر. اب بکر کے والد کون ہیں؟ کہا عمر. از اٹ پاسبل؟ یہ صحیح ہے؟ کریکٹ ہوگا آنسر؟ عمر اور بکر دونوں کا نسب نامہ مجھول ہو جائے گا. اگر اس قسم کا جواب دیا، اگر اس قسم کا جواب دیا کہ دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک عمر ایک بکر، کہا عمر کے والد کون ہے؟ کہا بکر. بکر کے والد کون ہے؟ عمر. جواب غلط. اسے کہتے ہیں دور. دور یعنی کسی چیز کو بیک وقت موجود اور بیک وقت نا موجود مان لینا. یعنی تناقض، واضح تناقض، صریح تناقض. عمر کے والد اگر بکر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب بکر تھے تو عمر نہیں تھا، عمر نہیں تھا تو بکر کا وجود تھا، بکر پھر والد ہوا تو عمر وجود میں آیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں بکر کا والد کون ہے، کہہ رہے ہیں عمر، اس کے معنی یہ ہے کہ عمر تھا بکر نہیں تھا، عمر کی سبب سے بکر وجود میں آیا. تو دور اسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عمر تھا بھی نہیں بھی تھا، بکر تھا بھی نہیں بھی تھا. واضح ہوئی بات؟ دور سمجھ میں آیا؟ اب یہ ایسی مثال دی ہے جو بھولیں گے نہیں آپ. یہ نہیں کہیں گے کہ موٹی موٹی اصطلاحیں، ٹرمینالوجیز فلسفی کے علاقے ممبر پہ ہم لوگوں کے اوپر ایسے انڈیل دیتے ہیں کہ مجبور ہو کہ ہم لوگ کہیں ہاں صاحب آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، مان لیا. یہ جتنے استدلال ہیں، جتنے دنیا کا کوئی بھی استدلال ہو، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ دور کی کتنی قسمیں ہوں، کہاں کہاں ہوں، کہاں دور جائز ہو، کہاں دور جائز نہیں، لیکن بنیادی طور پر دور باطل ہے، دور باطل ہے، دور ناممکن ہے، دوری جواب محمل ہے. ٹھیک؟ نبی خود یہ کہیں کہ میں نبی ہوں اور آپ مان لیجئے، یہ کیا ہوگا؟ دور. اور اس طرح پھر دنیا میں جتنے ہیں سب دعویٰ کر لیں کہ میں نبی ہوں. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہیں جناب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان لیا اس لیے کہ انہوں نے کہا میں نبی ہوں، آپ نے مان لیا، میں بھی کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، آپ مجھے مان لیجئے. دنیا کا ہر فرد کہے گا میں بھی کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، آپ مان لیجئے. تو وہاں آپ جواب دیں گے ہم نے محمد کو خود دعوائے نبوت کے نتیجے میں نبی نہیں مانا، ہم نے پہلے اپنی عقل سے سرکار رسالت مآب کی نبوت پہ دلیل قائم کی، اور جب ہماری عقل نے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی ہیں تب ہم نے ان کی ہر بات کو مانا. اور ہمارے یہاں اللہ نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا، عقل نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا،
نبی نے خود کو نبی کہا اور ہم نے نبی مانا، یہ ایسا نہیں ہوا، واضح ہے؟ تو اگر قرآن مجید ہی سے نبوت مصطفیٰ ثابت کرنی ہے، صرف قرآن سے، اسی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ذہن ان باریکیوں سے گزرے، نبوت ایک الگ حقیقت ہے اور سند نبوت ایک الگ چیز ہے، اثبات نبوت عامہ اور اثبات نبوت خاصہ کے لیے دلائل ہیں، واضح ہے یہ بات؟ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن سے نبی نہیں مانا، ہم نے ان کو پہلے نبی مانا، پھر ان کی زبان مبارک سے قرآن کو بطور سند تسلیم کیا، واضح ہے؟ اور اب آپ آگے بڑھیے، خود قرآن مجید میں توحید کی بحثوں میں جائیے، قرآن مجید میں عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے ایسے قضایا بیان ہوئے ہیں، ایسی دلیلیں بیان ہوئی ہیں جہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن یہ کہ خدا ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن مجید نے نہیں پیش کی ہے، خدا ہے اس کا اقرار عقل انسانی کرتی ہے، خدا ہے اس کا اقرار فطرت انسانی کرتی ہے، عقل و فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے، عقل و فطرت کے دلائل کام آتے ہیں نبی کی شناخت میں، پھر نبی کی زبان سے جو کلام آتا ہے اسے ہم کلام اللہ اور سند رسول اللہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قرآن سے ہر چیز ثابت کریں، قرآن سے تو ہم خدا کی ہستی کو بھی ثابت نہیں کرتے، ورنہ جو قرآن پہ یقین نہیں رکھتا اس کے آگے کبھی خدا کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ ہم اگر خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہیں ایک ایسے شخص کے سامنے جو نہ رسول اللہ کو رسول سمجھتا ہے نہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ واضح ہے؟ تو نہ ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی ہستی کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم نبوت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم امامت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں پہلے مرحلے میں، یہ عقل انسانی ہے۔ اگر آپ انسان ہیں تو گفتگو کیجئے گا، عقل سے بیزار ہیں تو گفتگو نہ کیجئے گا۔ آپ کو عقل دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس لیے؟ ہمیں کس لیے دی ہے عقل؟ واضح ہو گئی بات؟ تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت کیجئے، حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ کا وجود بھی، اللہ کی وحدانیت بھی، نبی کی نبوت بھی، مولا علی کی امامت بھی، سب ثابت ہے، لیکن پہلے مرحلے میں کون ثابت کرے گا؟ عقل۔ آپ ایسے دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں عقل کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے نفیس ترین شے جو خلق فرمائی ہے وہ عقل ہے، اور عقل آپ کو عطا فرمائی ہے، اور آپ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں لوگوں سے حجت کرتے ہیں، پیزار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، یا بہرحال بحث کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ہر جگہ عقل کی ٹارچ ساتھ میں ہوتی ہے، بس جہاں مذہب کی بات آئی اس ٹارچ کو بجھا دیتے ہیں۔ واضح ہیں؟ اللہ کا کی ہستی اور اللہ کی وحدانیت عقل سے ثابت ہوتی ہے پہلے۔ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں اللہ پرست اور اللہ کو یکتا ماننے والے تھے، جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں تھے، عرب میں تھے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے، अल्लाह की इबादत करते थे, कुरान नाजिल नहीं हुआ था, उन्होंने किस तरह पहचाना कि खुदा है? उन्होंने किस तरह पहचाना कि खुदा है? जाके आप तहकीक कीजिए, वक्त कम है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूं, और सिर्फ बनी हाशिम में नहीं, ये भी याद रखिएगा, खानदान परस्त ना समझिएगा हमें, हम खुदा परस्त हैं, हम मौला परस्त हैं। हम अल्लाह को मौला समझते हैं या उसे मौला समझते हैं जिसे अल्लाह ने मौला कहा? हम हर एक को अपना मौला और आका और मुक्तदा और सैयद और इमाम नहीं समझते। हम खानदान परस्ती कभी नहीं करते, वरना अबू लहब पे लानत ना करते, अबू तालिब पे सलाम ना करते। बस नाम आ गया, क्या प्यारा, क्या नूरानी, क्या अजीम नाम आ गया जबान पर, तो एक जुमला और कह के चलूं, अबू तालिब उस पैकरे अकले जाहरी का नाम है जिसने कुरान मजीद के बगैर मोहम्मद को नबी पहचाना। अकल दुश्मन की तरकीब तो सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत से लोगों को लोग कहते हैं ये शख्स, अरे ये तो अकल दुश्मन है, हैं? अबू तालिब चूंकि अकल मुजस्मा अकल है, जिसने कुरान के बगैर मोहम्मद को नबी जाना, तो दुनिया के जितने अकल दुश्मन हैं सब अबू तालिब के दुश्मन हो। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद, मुझे कोई झुटला नहीं सकता, मुझे कोई झुटला नहीं सकता इस बात पे कि अबू तालिब ने ऐलान किया था, अलम तअलमू अन्ना वजदना मुहम्मदन नबीयन कमूसा खुत्तफी अव्वलिल कुतबी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हमने मोहम्मद को नबी देखा है, नबी पाया है, उसी तरह जैसे मूसा नबी थे, और हम जानते हैं कि मोहम्मद अलम तालमु, इस क्या अजीम शेर है, ये क्या अजीम शेर, अलम तालमु अन्ना वजदना, यहां दोनों दलीलें हैं, हमने मोहम्मद को नबी पाया, और ताईद के लिए दूसरे मिसरे में कहा कि हमने इनका नाम पहले आने वाली किताबों में पाया, यानी अलम तअलमु अन्ना वजदना मुहम्मदन नबीयन कमूसा खुत्तफी अव्वलिल कुतबी। अगर इल्मे अरूज किसी को नहीं मालूम होगा तो एतराज करेगा कि इन्हें शेर सही याद नहीं, कुतुबी को कुतबी कह रहे हैं, हालांकि अज़राए अरूज भी दुरुस्त है, अज़राए लुगत भी। एक और सलावात पढ़ दीजिए, ये दफे दखल के लिए बात में भी दरमियान में बातें कहना भी कभी जरूरी महसूस हो जाता है, शेर इसी तरह है जिस तरह मैंने गुजारिश की। अबू तालिब ने मुस्तफा के की नबूवत का कलमा पढ़ा और हमने आपने सबने पहले अक्ल से काम लेकर, अक्ल अल्लाह ने दी इसीलिए ताकि आप सबसे पहले किसी हकीकत को अपनी अकल से दरियाफ्त करें। वजूद हक अकल से साबित है, फितरत से साबित है, फितरत गवाही देती है कि कोई है, अक्ल गवाही देती है कि कोई है। उसके बाद जब उसका कलाम मिलता है तो इस अक्ल और फितरत की रोशनी में हम तय करते हैं कि यह कलाम हक है। हम इसी तरह जो तहरीफ हो गई जिन किताबों में उसमें देख लेते हैं, हमारी फितरत पाकीज़ा फितरत इस्तिश्माम करती है नखत कलाम को और हमारी अक्ल फ़र्क करती है और कहती है ये आयतें अल्लाह की मालूम होती हैं, ये बंदों ने डाल दी हैं इसमें। वाज़ेह है तो अक्ल तौरात की हो हम पढ़ते हैं आज अक्ल की रोशनी में, इंजील पढ़ते हैं अक्ल की रोशनी में, कुरान भी पढ़ने के लिए कहा अक्ल की रोशनी में। हाँ अब आती हैं उसके बाद तफसीलात जुज़ियात सनदें। खुदा की कसम अगर इंसान आज़ादाना तौर पर अक्ल व फितरत पाकीज़ा अक्ल सलीम और फितरत मुस्तकीम की रोशनी में पूरे आदम ताई दम पूरी आलम व आदम की तारीख का मुताला करे तो वो मुतमईन होगा इस बात पर कि लफ्ज़ इमाम अगर किसी पे सजता है बाद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तो वो फर्जंद अबू तालिब अली इब्ने अबी तालिब के अलावा कोई दूसरी जात हो नहीं सकती। मैंने दो कलिमात इस्तेमाल किए फितरत मुस्तकीमा और अक्ल सलीम। दिल पाक हो दिमाग भी रोशन हो तो कोई मसला नहीं। अब उसके बाद आती हैं शहादतें। अब उसके बाद शहादतें कुरान मजीद में इमामत के मौजू पर कुरान मजीद ने जो रोशनी डाली है जितनी जामे और कामिल उसके बाद किसी और बहस की ज़रूरत नहीं है। अगर उन आयात के मानी और तर्जमे और तर्जमानी में तहरीफ ना की जाए। अच्छा किया जिन साहब ने भी सवाल किया, दिल खुश हुआ कि मुझे सआदत मिली कि मैं इस मौजू पर भी खुल के कुछ गुफ्तगू करूँ, इसलिए कि ये मसला ही तावील कुरान का है और इसीलिए मैं अपना दसियों बार का कहा हुआ जुमला दोहरा रहा हूँ, माह मुबारक रमज़ान तंजील कुरान का महीना है और माह मुहर्रम तावील कुरान का महीना है। लफ्ज़ इमाम मिलेगा कुरान में, मुहर्रम बताएगा इमाम कौन है। अब एक आयत की तरफ तेजी से, आयत आप सबको याद होगी, बहुत से ज़ाकिरीन बराबर जिक्र करते हैं, कोई मैं पहली बार थोड़ी इशारा कर रहा हूँ, क्योंकि जो कलीदी बहस है जो कलीदी मतलब है वो तो वही रहेगा, जो कलीदें हैं जो वो बदली नहीं जा सकती। जब भी कोई पूछे कि नमाज का जिक्र कुरान में कहाँ है तो आदमी यही कहेगा अकीमुस्सलाह, लाखों नहीं करोड़ों बार हर फकीह हर मुज्तहिद यही कहेगा। तो मैं कोई नई आयत की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, अगरचे बहुत से आयात ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा करूँगा तो आप कहेंगे कि हाँ इससे पहले इस आयत को इस रुख से नहीं पढ़ा था, लेकिन आज चूँकि गुफ्तगू शुरू हुई है तो मैं एक आयत मशहूर तरीन वैद इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। और याद करो उस बात को कि जब अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया बाज कलिमात के जरिए से। ये भी क्या बयान कुरानी है, बलाओं के जरिए से नहीं कहा, मुसीबतों के जरिए से नहीं कहा, कुर्बानी के जरिए से नहीं कहा, बेकलिमात। ये ऐसा शायान शान बलागत कुरानी है ये लफ्ज, इसमें न जाने कितनी चीज़ें पोशीदा हैं, इसमें बहुत से असरार और राज पोशीदा हैं, इसमें बहुत से राज़हाए कुदरत भी हैं, इसमें बहुत से असरार तकवीन भी हैं, इसमें बहुत से असरार और रमूज तशरीह भी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। कलिमात, इस एक लफ्ज़ कलिमात की अगर तशरीह कीजिए तो न जाने कितने सफ़ात तहरीर करने पड़ेंगे। वैद इब्तला इब्राहिम रब्बुहु बेकलिमातिन, याद करो जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया परवरदिगार ने किसके ज़रिए से, कलिमात के ज़रिए से। ये कलिमात की बलागत वैसे ही अज़ीम शान है जैसे जनाब आदम के वाक़े में असमा की बलागत है। कायनी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, और उसके ज़िम्न में फिर जब बात आगे बढ़ी तो क्या कहा, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आदम को अस्मा की तालीम दी। जैसे अस्मा की बलागत बेनिहायत है, उसी तरह यहाँ कलिमात की बलागत बेनिहायत है। वहाँ भी राज़ कुदरत थे जो अल्लाह ने आदम के सुपुर्द किए थे, यहाँ भी राज़ कुदरत हैं जो अल्लाह ने इब्राहिम के सुपुर्द किए हैं। अब समझिए आप राज़ कुदरत, ये मौजू जो क्यों जुड़ा हुआ है इमामत से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। इजमालन बस इतना अर्ज कर रहा हूं कि इसे सिर्फ एक वाकया मुराद नहीं है, बे कलिमात हैं, कलिमात कलिमे की जमा है। यानी जो वो पर्चा था इम्तिहान का, उसमें कई चीजें थी। कुछ थ्योरेटिकल पर्चा था, प्रैक्टिकल पर्चा था, है? पर्चे में कई चीजें थी। बे कलिमात इन, एक चीज नहीं था, बे कलिमत इन नहीं है, बे अम्र इन नहीं है, कोई एक अम्र नहीं था, बे कलिमात इन, तो इसमें बहुत सी चीजें हैं। यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला जिसे इमाम बनाना चाहता है तो उसे बहुत से उलूम, बहुत से असरार, बहुत से रुमूज, नामूसे मशीयत से आशना करता है, नामूसे फितरत से आशना करता है, राजहाय कुदरत से आशना करता है, और कुछ चीजें अपनी तरफ से उसे अता करता है, कुछ इख्तियार देता है। और सबसे बड़ा इख्तियार तो वो देता है कि जो एक फर्द अपने नफ्स पर इख्तियार रखता है। छोटा सा लफ्ज जो आखिर में कहा, ये बहुत बड़ी बहस है। सबसे बड़ा इख्तियार अल्लाह जो देता है अपने औलिया को, अइम्मा को, नबियों को, रसूलों को, वो ये इख्तियार देता है कि वो अपने नफ्स पे इतना इख्तियार रखते हैं कि पूरे इख्तियार के साथ बातिल से दूर रहते हैं, हक पर गामजन रहते हैं, खुदा के राजों के अमानतदार रहते हैं, कहीं भी दुनिया का गुबार उड़ के उनके दामन पे जम नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। और उसके बाद जब कामयाब हो गए तो क्या हक सुभानहु व तआला ने फरमाया, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम अब हम तुम्हें तमाम इंसानों के लिए इमाम बना रहे हैं। ये इमाम का लफ्ज यहां आया या नहीं आया? मैंने गलत आयत पढ़ दी? जब लफ्ज इमाम सराहतन मौजूद है और यह है कि अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें इमाम बना रहा हूं, उसी तरह जैसे आदम को कहा था कि मैं आदम को खलीफा बना रहा हूं, अब यह बहस अलग करूंगा कि आदम के यहां लफ्ज खलीफा क्यों आया, इब्राहिम के यहां लफ्ज इमाम क्यों आया। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। ये भी बड़ी शीरी गुफ्तगू, ये भी बड़ी शीरी गुफ्तगू। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। आज सिर्फ एक आयत का जिक्र करके, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है मुझे, इसके बाद एक दूसरी तकरीर भी करनी है तो ताकत भी साथ नहीं दे रही है। ये मैं थोड़ी तकरीर करता हूँ मिंबर पर, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि मैं तो बस बैठ जाता हूँ मिंबर पर, तकरीर तो पता नहीं कौन करता है, जो सेहत की कैफियत है वो बस ऐसी ही है। तो इमामत इब्राहिमिया इसका तज़किरा कुरान मजीद में मौजूद है सराहत के साथ। और फिर यही नहीं, अल्लाह फरमा रहा है मैं इमाम बना रहा हूँ तुम्हें तमाम इंसानों के लिए। इसको जनाब इब्राहिम ने ये नहीं कहा, ये नहीं समझा कि बस एक चीज़ मिल गई हमें, अब हम अपने बाद जिसको चाहे इमाम बना दें, जैसे बागी शाम ने किया था कि मुझे मिल गया था, अब मैं अपने बेटे को बनाऊंगा और जो मेरे बेटे की राह में आएगा उसे जहर से, तलवार से, या जिस जिस तरह मुमकिन होगा रास्ते से हटा दूंगा। یہ تاغوتیت کی شیطنت کی فکر ہے، ابراہیمی کچھ اور ہے شان. وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں امامت دی ہے تو اس کا مطلب یہ عہدہ الہی ہے، اب خواہش تو ہے میری نسل میں بھی رہے، تو خود نہیں فیصلہ کرتے. وہیں کہتے ہیں کہ وہ من ذریتی، اے پروردگار اور میری ذریت سے، یعنی میری نسل میں بھی یہ عہدہ رہے گا. اللہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم نے دے دیا تمہیں، اب تم جسے چاہو اپنے بات بنا لو. لیکن اب اس ماحول میں تو اسی انداز سے مطالبہ کیے جا سکتے ہیں. ومن ذریتی، ابھی تمہیں بنا دیا امام، اب حق سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، دیکھو یہ میرا عہدہ ہے. اب سمجھ میں آیا، امامت کو کہہ رہا ہے پروردگار یا کسی اور چیز کو؟ اللہ امامت کو اپنی طرف اپنا عہد کہہ رہا ہے یا بندوں کا شورا؟ انی جاعلک للناس اماما قال رب ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. یعنی اب اپنی نسل کی تربیت کرو، جو خطا کار ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا، وہ امام نہیں بن سکتا. یہاں وعدہ چھپا ہوا ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام بن کے رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس ایک بیان قرآنی میں لفظ کلمات کی بلاغت، لفظ امام کا وجود، لفظ عہدی کی بلاغت، لا ینال عہد الظالمین، یہ پورا مضمون، یہاں یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ امامت الہی منصب ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ یہ ظالموں کو نہیں دیتا، معصوم کو دیتا ہے، اور اسے دیتا ہے جسے کلمات و اسرار بھی دیے ہوں. یعنی دو چیزیں اہم ثابت ہو گئیں، علم امام اور عصمت امام. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. علم امام، عصمت امام، عہدہ امامت، عہدہ امامت کا تعلق خدا سے، یہ سب چیزیں عقل رہنمائی کرتی ہے. پہلے قرآن آ کے ارشاد فرماتا ہے، قرآن عقل کی تائید کرتا ہے، فطرت بشری پہلے گواہی دیتی ہے، قرآن آ کے اس فطرت کی عبارت کی تفسیر کرتا ہے. ورنہ یقین رکھیے کہ یہ جو پورا مضمون قرآنی ہے نا، پورا مضمون قرآنی، یہ آپ کے گوہر دل پر لکھا ہوا ہے قلم مشیت سے. معصوم کی بات الگ ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں. فطرت، فطرت پاکیزہ، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارک روم میں چلے جائیے، پڑھیے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلنَّاسِ حَنِیفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، تم اپنا رخ، رخ حیات، رخ زندگی، سفر زندگی، اپنا وجود، اپنا رخ معین کر لو فطرت کی طرف، وہ فطرت جس پر اللہ نے تمہاری خلقت کو ڈھالا ہے. تو واضح ہوئی بات، چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں، چیزیں آپ کی عقل کی روشنی میں نظر آ سکتی ہیں، پھر قرآن مجید اس پہ مزید روشنی ڈالتا ہے ताकीद के साथ, ताईद के साथ, सराहत के साथ, वजाहत के साथ, ताकि दिल और दिमाग में ये बात राशिख हो जाए कि हमारी अकल जो फैसला कर रही है वो गलत नहीं है, ताईद वही भी हासिल है। एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ये सिर्फ एक ही आयत नहीं है, कुरान मजीद में न जाने कितनी आयतें हैं। जाहिर है कि अब आपने सवाल किया है तो फिर सुनिएगा इत्मीनान से। और अब ये मकसद नहीं कि मैं आज ही सब आयतें सुना दूंगा, मुझ पर भी तरस खाइए, जरा रहम कीजिए। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। बात बिल्कुल दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि हम अल्लाह की वहदानियत को भी कुरान से नहीं साबित करते, अकल साबित करती है। कुरान हमारे अकली इस्तेदलाल की ताईद करता है, मोहर लगाता है कि शाबाश, ठीक समझे। और अगर गलती हो रही होती है अकल से, जहालत की बिना पर या किसी वजह से, तो फिर कुरान मजीद उसको रोशनी दिखा देता है, सही कर देता है। वाज़े नबुवत मुस्तफ़ा हम पहले अकल से पहचानते हैं, हम अकल से पहचानते हैं कौन नबी है कौन गैर नबी। हम अकल से पहचानते हैं कौन नबी है कौन गैर नबी। हम अकल से पहचानते हैं कौन नबी है कौन गैर नबी। यानी ये इम्तियाज पहले अकल के पास होता है कि हम बराबर ना समझें। हमारे बड़े भाई थे, हमारे जैसे थे। क्या गुस्ताखी है, क्या खता है, क्या जसारत है, क्या बेनूरी है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हमारे जैसे थे। इसी तरह कयास करेंगे, देखिए मुस्तफ़ा का जो रुतबा पहचानता था वो ये नहीं सिर्फ समझता था कि ये मेरे भाई का बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे ख़ानदान का एक फ़र्द है, इसलिए इसकी हिमायत करनी चाहिए, वरना हिमायत की एक हद होती है। वो सब कुछ रखने के बावजूद जानता था कि मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा है। इसलिए शेबे अबी तालिब के ज़माने में अपने जिगर के टुकड़ों को उसको बचाने के लिए उसके बिस्तर पे डाल देता था। ये यकीन झलक रहा था कि जानता है कि मुस्तफ़ा हमारे जैसा नहीं है, मुस्तफ़ा बुलंद है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, हमें इसकी मुताबियात करनी है, हमें इसकी पैरवी करनी है। हम बूढ़े हैं, चचा हैं, मगर हमें इसकी पैरवी करनी है। हमें इससे नहीं कहना है कि बेटे भतीजे तू जवान है मुझे बचा ले, बल्कि मुझे इसको बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना है। यह फिरासत मोमिन, यह फिरासत अबू तालिब, यह है अक्ल अबू तालिब। वरना सारी दुनिया का दस्तूर है, बेटे मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं भतीजे मेरे भतीजे, ये कुरैश मुझे बहुत सताते हैं, अब मुझे बचा ले इनके पत्थरों से, मुझे बचा ले इनके हमलों से। तू जवान है बेटे, मैं बूढ़ा हूं, अब तू मुझे बचा या मैं तुझे बचाऊंगा। मगर मालूम है कि ये मुझ जैसा नहीं आए, ये मेरी आगोश में अमानत है अल्लाह की, ये मुस्तफा है। हुवल मुस्तफा मिन सिर्रिहा व समीमिहा, ये मुस्तफा है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। और मैं कितना ही बूढ़ा हो जाऊं, मुझे कुर्बान होना है, इसे बचाना है, मुझे अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान करना है मगर इसे बचाना है। यह है दर्स अबू तालिब, शेबे अबी तालिब का दर्स, जो शेबे अबी तालिब से शुरू होता है, करबला तक जारी रहता है। हम अली को अली मानते हैं, हसन को हसन मानते हैं, हुसैन को हुसैन मानते हैं, ये सब एक ही शजर नूर के की शाखें हैं, ये उसी शजर के उसूल हैं, मगर मोहम्मद मोहम्मद हैं। मोहम्मद को बचाने के लिए हुसैन ने उसी तरह खुद को कुर्बान किया है, मोहम्मद को बचाने के लिए कुर्बानी दी है हुसैन ने, जैसे मोहम्मद को बचाने के लिए अबू तालिब कुर्बान होते थे और अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। पैगंबर ने कहा था आना हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, लेकिन हुसैन ने खुद को कुर्बान किया, किसके लिए? मोहम्मद को बचाने के लिए। वाज़े है, बस गुफ्तगु तमाम, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका। वो जो तरबियत की थी ना शेबे अबी तालिब में, हजरत अबू तालिब ने अपने तमाम बच्चों को, बेटों को, बेटों को, गुलामों को नहीं, ये रात की तारीकी है, एक शख्स को बचाना है, आने वाले जालिम को धोखा देना है, सीधी सी बात है, ताकि वो धोखा खा जाए और समझे कि यहां मोहम्मद लेटे हुए हैं, ये बिस्तर खाली नहीं है। बस इतना साबित करना था ना कि ये बिस्तर खाली नहीं है, मोहम्मद का बिस्तर है, किसी गुलाम को, किसी नौकर को, किसी को लेटा देते नहीं। वो ये भी जानते थे कि इसके बिस्तर पे हर एक नहीं लेट सकता, हमें इसे बचाना है और इसकी नामूस को, इसकी हुर्मत को, इसके हर आजमत के हर निशान को बचाना है। ये नहीं कि बस दुश्मन को धोखा देना है, इसे हटा दिया, वहां किसी नौकर को बैठा दिया, वहां सिर्फ बिस्तर लपेट के रख दिया ताकि दूर से देखे कि हाँ कोई लेटा हुआ है। क्या क्या नहीं हो सकता, क्या क्या नहीं हो सकता, नहीं, अपने जिगर के टुकड़ों को अली को लेटाया, कभी जाफर को लेटाया, कभी अकील को लेटाया, फरमा रहे आप, और वो जो तरबियत थी अबू तालिब की वो वहां से करबला तक जारी रही। इसीलिए जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो कहना पड़ता है अस्सलामु अला शुहदा मिन वल्द अमीर المؤمنین, अस्सलामु अला शुहदा मिन वल्द जाफर, अस्सलामु अला शुहदा मिन वल्द अकील। अल्लाह अकबर। बस दो फकरे में मजलिस तमाम हो जाएगी और आप कुर्सा देंगे। आज जिन बच्चों का आप मातम करेंगे वो बच्चे हजरत अब्दुल्लाह इबन जाफर तैयार इबन अबी तालिब, एक बच्चे का नाम औन है, और क्या नाम है, औन के मानी समझते हैं, औन यानी मदद, औन के मानी मदद के हैं। ये बच्चा औन है जिसने अपने वजूद से माँ को भी मदद दी, हुसैन को मदद दी, इस्लाम को मदद दी, औन क्या नाम है। और दूसरा बच्चा है मोहम्मद। बस गुफ्तगू तमाम, परवरदिगार आप हजरात की आज़ादारी कबूल फरमाए, आपके नौहो मातम को कबूल फरमाए, आपको सरात मुस्तकीम इमामत व विलायत पे गामजन रखे, आपके हाथों में हमेशा दामन ख़त्म नबूवत रहे, आपके सीनों में हमेशा चराग तौहीद रोशन रहे, ये चराग तौहीद जो करबला वालों ने अपने पाकीज़ा लहू से जलाया है, ये मकाम ख़त्म नबूवत जिसकी हिफाजत अली और हसन और हुसैन और आले हुसैन ने की है, ये मकाम ख़त्म नबूवत जिसकी हिफाजत किस तरह की गई कि बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, सब कुर्बानी के लिए मचल रहे थे रोज़े आशूरा। ख्वातीन माएँ तरबियत कर रही थी बच्चों की, बेटा देखो कल रोज़े आशूरा है, मुझे मादर गिरामी फातिमा जहरा के सामने शर्मिंदा ना करना, बेटा बे जिगरी से जिहाद करना, बेटा जब तक जिंदा रहो मामू की तरफ एक तीर भी आने ना पाए। जैसे ही रोजे आशूरा का सूरज तुलू हुआ और जिहाद करबला का आगाज हुआ, वैसे ही सब तड़प रहे थे, एक से बढ़कर एक मुसाबिकत थी गोया, पहले मैं जान दे दूं, पहले मैं कुर्बान हो जाऊं, पहले मैं मैदान में चला जाऊं। और आके आका से इजाजत तलब होते थे। आका हुसैन ने जिन बच्चों को जीने के लिए पाला था उनको मरने के लिए जाने देना आसान न था, आसान न था। न कासिम को जुदा करना आसान था, न अकबर को जुदा करना आसान था, न उन्होंने मोहम्मद को जुदा करना आसान था, मगर इधर जैनब का इसरार, उधर बच्चे मामू का दामन थामे खड़े हैं। मैं उनकी तर्जमानी करें, क्या कह रहे होंगे बच्चे जब मामू रोक रहे होंगे कि नहीं बेटा तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता, तो यही तो कहा होगा, मामू जान आप मेरी मादर गिरामी का बड़ा एहतराम करते हैं, आपकी बहन मेरी माँ जैनब का वास्ता है, बस मुझे जाने दीजिए। क्या क्या मिन्नतें समाजतें कर रहे हैं बच्चे, किस लिए? बच्चे किस लिए? जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। क्या बच्चे थे, क्या माएं थीं, क्या खानदान था, और क्या सामने अजीम हदफ और मकसद था। हदफ और मकसद था दीन इस्लाम, तौहीद, नबुवत, इमामत, कुरान, ये था मकसद और हदफ। सियासत नहीं, इमारत नहीं, हुकूमत दुनिया नहीं, खिलाफत ज़ाहिरी नहीं, गलत फहमी में मुबतला ना हो, इनका हदफ और मकसद राज़हाए कुदरत की हिफाजत और मनसूबा मशीयत की तकमील, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, दुनियावी कोई शायबा नहीं है। बस गुफ्तगू तमाम, बच्चे जिन्हें जीने का हक है वो मरने का इज्न चाहते हैं, बच्चे जिनके जीने की उम्र है वो मरने के लिए तड़प रहे हैं। क्या मंजर है खुदा की कसम, कैसा अलमनाक मंजर है। और बिलाखर आका हुसैन ने सीने से लपटाया, प्यार किया, इजाजत दी, जाओ बेटा जाओ, हमें मालूम है तुम्हारा नाम महजर शहादत में मौजूद है, सआदत नसीब करो। और हाँ बच्चों, हमें ये भी अंदाजा है बहुत प्यासे हो, बहुत भूखे हो, जाओ जाओ, खुदा हाफिज, तुम्हारे नाना जामे कौसर लिए हुए इंतजार कर रहे हैं, जाओ। ओन को इजाजत दी, मोहम्मद को इजाजत दी, दोनों बच्चे गए। और उम्रें कम हैं, उम्रें बड़ी नहीं हैं, लेकिन जंग बड़ी की, दुश्मन भी हैरत ज़दा है, बहुत से दुश्मनों को हलाक किया, लेकिन गए थे जामे शहादत नोश करने के लिए, तो जामे शहादत मिला, नसीब हुआ। जब एक भाई घोड़े से गिरने लगा, आवाज़ दी, मामू जान मेरा आखिरी सलाम। क्या अलमनाक और कर्बनाक आवाज थी, मामू जान मेरा आखिरी सलाम। उधर मोहम्मद की आवाज आई, मामू जान मेरा भी आखिरी सलाम। आका हुसैन तशरीफ ले गए और मैदान में जाकर दोनों बच्चों के लाशें उठाकर खैमा गाह में लाए। बस दो तीन कलिमात आप सुनते रहते हैं, मगर फिर भी चूंकि ये वाकईयत की तर्जुमानी है, ये हकीकत की तर्जुमानी है, और इससे मरातिब वाज़े होते हैं। इमाम अपनी जगह, मासूम अपनी जगह, मगर मासूमे करबला जिन्हें मैं कहता हूँ, मालूम है मैं बीबी जैनब को मासूमे करबला कहता हूँ। जैसे मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दोख्ता आपकी बेटी मासूमे कुम कहलाती है, इसी तरह मैं मौला अमीरुल मोमिनीन की इस बेटी सानिया जहरा को मासूमे करबला कहता हूँ। और आप पूछेंगे फिर सकीना को क्या कहेंगे, मैं बीबी सकीना को मासूमाए शाम कहता हूं। मासूमाए करबला, जनाब ज़ैनब का क्या मर्तबा है, क्या मकाम है, क्या शुजात है, खादून होने के बावजूद क्या शुजात है। इमाम अलैहिस्सलाम ने रोज़े आशूरा सुबह आशूरा दो खैमे मखसूस किए थे। एक खैमा बड़ा खैमा था जिसे फुस्तात कहा जाता है, और आज तक करबला मोहल्ला में एक मस्जिद फुस्तात मौजूद है, मस्जिद फुस्तात खैमागाह से थोड़े फासले पर। वो मस्जिद अब तो छोटी सी नज़र आती है, उस वक्त वो खैमा बहुत बड़ा था। वो फुस्तात वो खैमा था जिसमें शब भर तमाम अस्हाब यकजा थे, और एक दूसरा खैमा था जिसमें तमाम अहले बैत के जवान और बच्चे यकजा थे। जो सुबह हुई तो यही फुस्तात किस काम आ रहा था, जो सहाबी शहीद होता था उसका लाशा लाके फुस्तात में रखते थे, और अहले बैत में से जब शहीद होता था कोई तो उसको उस खैमे में ला के रखते थे जहां अहले बैत के बच्चे शब भर बेदार रहे। उस खैमे में जहां अहले बैत के अफराद आ रहे थे वहां कौन था लाशों के इस्तकबाल के लिए? वहां लाशों के इस्तकबाल के लिए ज़ैनब थी, ज़ैनब मासूमाए करबला, ज़ैनब। शायद इसमें हिकमत यह भी रही हो कि भाई हुसैन अजीजों का अस्हाब का लाशा उठाते उठाते दिल यकीनन दिल पे सदमा होता है, तो सामने जब देखेंगे बहन ज़ैनब इस्तकबाल के लिए मौजूद है तो हौसला हुसैन का और बुलंद हो जाएगा। इसलिए जब अहले बैत से कोई आता था ज़ैनब आगे मौजूद, भैया लाओ मेरे सुपुर्द करो, अकबर आए कहा लाओ भैया मुझे दो, मैंने पाला है अकबर को, मैं संभालूंगी लाशा। कासिम आए कहा भैया मेरे सुपुर्द करो, लेकिन जब ओनो मोहम्मद आए ज़ैनब नजर ना आई। आका हुसैन ने पूछा मेरी बहन ज़ैनब कहां है, फिज़ा ने इशारा किया आका वो सजदे शुक्र में, परवरदिगार शुक्र है तेरा तूने मेरी कुर्बानी कबूल फरमा ली, मुझे मेरे भाई और मेरी मादर गिरामी के सामने शर्मिंदगी ना हुई, परवरदिगार इसको इस कुर्बानी को कबूल। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा, परवरदिगार हमें और मिल्लत इस्लामिया को नामूस कुरान और नामूस अहले बैत पर जान देने की तौफीक करामत फरमा, परवरदिगार हजरत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद ज़ुल्क़द्र रज़वी साहब को सेहत कामिला अता फरमा, उनका साया हमारे सरों पर बरकरार रख, और परवरदिगार उनके हाथों से मस्जिद इमाम अली की तामीर की तकमील फरमा, परवरदिगार तमाम मोमिनीन को तौफीक करामत फरमा कि वो इस काम में उनके दस्तो बाजू बनकर शरीक हो सकें। दामे दिरमे सुखने मौला अमीरुल मोमिनीन के नाम पर ये मस्जिद तामीर हो जाए। परवरदिगार माबूद हमारे सरों पर मरजियात हक्का का साया बरकरार रहे, उलमाए आलाम का साया बरकरार रहे, फुकहा का साया बरकरार रहे। परवरदिगार अपने वली आखिर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा, और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा।